ये आकाशवाणी है, अब आप वैष्णवी से समाचार सुनिए। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त को लेकर सहमति बन गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि दोनों देश 2020 में नियंत्रण रेखा पर जहां थे वहीं वापस आ गए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच विस्तृत चर्चा के बाद यह सहमति बनी। रूस की सेना में लड़ रहे भारतीयों की वापसी के मुद्दे पर विदेश सचिव ने कहा कि 85 भारतीय स्वदेश लौट आए हैं और 20 लोग अभी भी वहीं हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में उच्चतम स्तर पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल रूस रवाना होंगे। श्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर जा रहे हैं। सम्मेलन का विषय न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सशक्त करना है। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से सभी गतिविधियों में शामिल हुआ है। श्री मिस्त्री ने कहा कि भारत ब्रिक्स के लिए बहुत महत्व रखता है और इसके योगदान ने आर्थिक विकास, सतत विकास तथा वैश्विक शासन जैसे उधार जैसे क्षेत्रों में ब्रिक्स के प्रयासों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे से मुलाकात की। भूटानी के प्रधानमंत्री की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भूटान भारत का विशेष मित्र है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच सहयोग और भी बेहतर होता जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नशीले पदार्थों के व्यापार, साइबर अपराध, घुसपैठ, आतंकवाद और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से अशांति फैलाने के प्रयास जैसे खतरे देश के सैनिकों के दृढ़ संकल्प के सामने नहीं टिक सकते। नई दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए श्री शाह ने कहा कि संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले से ही शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि एक बार ये कानून पूरी तरह लागू हो जाएंगे तो देश की आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बन जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल हुई है। सरकार उड़ान योजना को अगले 10 वर्षों तक जारी रखने की योजना बना रही है। उड़ान योजना के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि 50 और हवाई अड्डे शुरू करने के साथ ही वर्तमान हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने की भी योजना है। श्री नायडू ने कहा है कि सरकार विमान परिचालन को प्रभावित करने वाली फर्जी कॉल की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सुरक्षा और सतर्कता तंत्र को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार फर्जी कॉल को संज्ञेय अपराध बनाने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने इस महीने 1,000 करोड़ रुपए से की बिक्री करके उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि ये उपलब्धि लोगों के सस्ते और गुणवत्तापूर्ण दवाओं पर बढ़ते भरोसे की दर्शाता है। वर्ष 2014 तक केवल 80 जन औषधि केंद्र थे जो इस वर्ष बढ़कर 14,000 से अधिक हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर और क्षेत्र में दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु की खराब गुणवत्ता को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण ग्रेप 2 कल सुबह 8 बजे से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू किया जाएगा। ये निर्णय नई दिल्ली में एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति की बैठक के दौरान लिया गया। समिति ने लोगों से अक्टूबर से जनवरी तक निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से बचने का आग्रह किया है। भीषण चक्रवाती तूफान दाना के बृहस्पतिवार की रात को लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट को पार करने की आशंका है। इस बीच मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने आज चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकार को आश्वासन दिया कि सभी केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों को भी तेज बारिश के कारण किसी भी स्थिति से निपटने के लिए